ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता ईश्वरीय ज्ञान का आध्यात्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और थोड़े शब्दों में अध्याय 13 में ज्ञानी आत्मा के लक्षणों का वर्णन है, साथ में आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों का आपस में जो मिलन होकर कार्य होते हैं उसका भी थोड़ा सा वर्णन है, लेकिन उसकी भाषा ऐसी है जिसको आम व्यक्ति आज नहीं समझ पाता। तो हम इस अध्याय का लेंगे, ये अध्याय, इसमें दिया गया ज्ञान मनुष्य के जीवन को सरल और सात्विक बना देता है। अगर इस ज्ञान का हम आचरण करें तो हमारा जीवन विघ्नों से मुक्त, परम आनंद से भरपूर हो जाएगा। तो आत्मा प्रकृति माना ये देह, इसके साथ में जब आती है तब कर्म करती है, कर्म इंद्रियों का आधार लेती है। परमात्मा परम सत्ता है, उसकी का भिन्न भिन्न तरह से वर्णन गीता में है। वो भी एक आत्मा है पर परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा वही कार्य कराता है। ये इसमें भी है, मैं महादेव के द्वारा संहार, विष्णु के द्वारा पालना और ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति का कार्य कराता हूँ। तो एक चौथी सत्ता भी हो गई ना इन तीनों के ऊपर, वो निराकार है, जिसको लोगों ने पार ब्रह्म परमेश्वर कह दिया है। उससे हमारा नाता हो, उससे हमारा कनेक्शन हो और उसको हम पूरी तरह जान लें, उसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता, जैसे उसमें सभी विद्याओं का सार समाहित हो जाता है। ये बात गीता में भी आ गई है इन्हीं अध्यायों में। तो हम सभी अब चिंतन करें, देखो ज्ञान तो पहले से भी लोगों के पास है, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, लेकिन लोग इसके पंडित बनना, इसके विद्वान बनना, इनको कंठस्थ कर लेना, इसको ही ज्ञान समझते हैं। लोग कहेंगे बड़ा ज्ञानी है, चारों वेद कंठस्थ हैं, इसको वेद प्रवक्ता है ये। लेकिन ज्ञानी के लक्षण यदि ज्ञानी के जीवन में नहीं आए तो समझना चाहिए ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं है। और जब तक ज्ञान को जीवन में उतारा नहीं जाता, अर्थात इसको धारण नहीं किया जाता, इसकी सूक्ष्मता भी समझ में नहीं आती। भगवान ने कौन सी बात कैसे कह दी, इसको वही समझ सकते हैं जिन्होंने प्योरिटी के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा अपनी बुद्धि को अति सूक्ष्म बना लिया हो। जैसे मैं इसी अध्याय की एक बात बताऊं, हे अर्जुन, वास्तव में इस देह में स्थित मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। अब ये ऐसे महावाक्य हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, ये आत्मा परमात्मा कैसे, पर इसके गुह्य रहस्य को ज्ञानी और योगी जन समझते हैं। परमात्मा दूसरे के तन में आकर बोल रहे हैं, मैं भी आत्मा हूँ पर परम हूँ, इसलिए परमात्मा हूँ, इस तन में बैठकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो अगर ज्ञान को हम सरल कर देते हैं तो वो एक आम जन के लिए भी सहज सुलभ हो जाता है, मान्य हो जाता है, नहीं तो लोग उसे पढ़ते ही नहीं है, भाई कठिन भाषा है, विद्वान भी उसकी व्याख्या थोड़ा दूसरों के कंपटीशन में आके कि हमारी भाषा या हमारी शैली थोड़ी ढीली न हो जाए, साधारण न रह जाए, थोड़े क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो ज्ञानी आत्मा के लक्षण, अभाव शब्द का प्रयोग किया गया, अभाव का अर्थ है न होना। भाई पहला है ज्ञानी वो जिसमें अपनी श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव हो, अभिमान न हो, जो दम्भाचरण न करता हो, दम्भ ये भी अहंकार का एक स्वरूप है, इससे भरा हुआ आचरण न हो, जिसकी मन बुद्धि सरल हो, जो दूसरों को किसी भी प्रकार से सताता न हो। पहले हम ये चार चीजें ही ले रहे हैं, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाता हो, दुख न देता हो। अब देखिए इन चार बातों को यदि हम ले लें तो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। आज समाज में देखें, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस जाति का हूँ, अपनी जाति की श्रेष्ठता का अभिमान रहता है, वो खत्म नहीं होता। इसलिए दूसरों के प्रति दृष्टि थोड़ी निगेटिव रहती है। पहले तो हमारे देश में ये सब बहुत था, कुओं से पानी लाया जाता था। जो छोटी जाति के लोग होते थे वो दूसरों के कुओं से पानी भी नहीं भर सकते थे। बड़ा एक दूषित सा माहौल था, एक दूषित सी दृष्टि थी, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा था। लेकिन ज्ञान हमें क्या सिखाता है, तुम सब आत्माएं हो। ये तो शरीर के धर्म है ना, जाति है, इसने इस जाति में जन्म लिया, उसने उस जाति में जन्म लिया, वो भिन्न भिन्न कर्मों के कारण हो सकता है। कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी शूद्र के संस्कारों वाला हो जाता है, और कोई छोटी जाति में जन्म लेकर भी बहुत श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है, विद्वान बन जाता है। तो ये जो श्रेष्ठता का अभिमान है, भिन्न भिन्न तरह के अभिमान होते हैं, मैं धनवान ज्यादा हूँ, इसमें श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास डिग्री बहुत है, इसलिए उसका भी अभिमान रह जाता है, मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, मेरा पद बहुत बड़ा है, तो अभिमान आ जाता है। कई बार छोटे लोगों को बड़ा पद मिल जाए तो अभिमान थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये अभिमान कितनी समस्याओं को पैदा करता है। जहाँ अपनी श्रेष्ठता का अभिमान मनुष्य को आ जाता है, वहाँ देखिए एक लक्षण दिखाई देगा आपको, वो मनुष्य दूसरों से ठीक ढंग से बात नहीं करेगा, प्यार और सम्मान से बात भी नहीं करेगा, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, संगठन कमजोर पड़ जाते हैं। अब आप संगठन में देखिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें बड़े बड़े संगठन है, अगर वहाँ व्यक्ति में अभिमान है, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, ये सब छोटे हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी क्या पूछ, इनकी क्या वैल्यू, तो मनुष्य का व्यवहार बिगड़ जाएगा, सम्मान नहीं रहेगा। सम्मान नहीं रहेगा तो वो कार्य करने में डेडिकेट नहीं करेंगे, अपने गुण में डेडिकेशन की भावना ही नहीं आएगी। तो अभिमान, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान किस तरह कष्टदायक है। महात्माओं में कईयों में अभिमान रहता है, मैं महामंडलेश्वर हूँ, ऊपर ही बैठना चाहिए मुझे, ये मेरी सीट होनी चाहिए, ये मेरी गद्दी होनी चाहिए। अभिमान अगर वैसा न मिले, वो ऊपर उचित सम्मान न मिले, तो उनकी मनोस्थिति बिगड़ जाती है। तो ये श्रेष्ठता का अभिमान फिर जो सामने बैठे हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है, जो साथी हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है, और जब वो बोलेंगे, मान लो भाषण करना है, तो उनकी भाषण में एक प्रभाव नहीं होगा, रूहानियत नहीं होगी, लोग उसे बहुत ज्यादा लाइक नहीं करेंगे, तो कितने बड़े नुकसान हुए। जिस व्यक्ति के बोल सबको फॉलो कर लेने चाहिए, जिस व्यक्ति के बोल लोगों के जीवन को बदल देने चाहिए, उसमें से जो श्रेष्ठता का अभिमान है वो इन सबसे मनुष्य को वंचित कर देता है। तो हम सभी इन चीजों पे ध्यान दें, हम ज्ञानी हैं तो हम ये दृष्टि रख लें, आप सब हम भगवान के बच्चे हैं, हम सब समान हैं। समभाव की बड़ी चर्चा है गीता में, ये सब बहुत चर्चा, मैं इनको सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, भगवान के बच्चे हैं, हम सब आत्माएं हैं, हम सब उसकी रचना हैं, कोई भेदभाव नहीं, बड़ा छोटा ये क्वालिफिकेशन के आधार से होता, किन्हें ज्यादा पढ़ लिया, किसी को बुद्धि किस तरह की है, आत्मा में विभिन्न तरह की मन बुद्धि संस्कार हैं, उसके अनुसार वो अपने को श्रेष्ठ या मीडियम या थोड़ा नीचा बना लेता है। लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी ना हो जाए, जितने हम बड़े बने अपने छोटों को भी प्यार की नजर से देखेंगे, समस्याएं घट जाएंगी, जितने हम बड़े बने अपने छोटों को भी सम्मान देंगे, अनेक समस्याएं घट जाएंगी। चाहे परिवारों में है यही बात, पहले परिवारों का एक बड़ा होता था, मुखिया कहते थे उसे, उसमें यदि अभिमान है अपने बड़ेपन का तो परिवार बिखरने लगते हैं, बिखरने लगते थे। तो अब ये ईश्वरीय ज्ञान हमारे पास है, हम समभाव धारण करें, हम नम्रचित्त हो जाएं, यही सच्चे ज्ञान का लक्षण है, और यही श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है। ओम शांति।